इतना तो प्लस पॉइंट आया, ये इम्पॉसिबल नहीं, ये संभव है। तो इन बातों पर भी देखो, पुण्य के उदय से आपको ये सुख मिल रहा है, लेकिन बंद कौन से कर्म का हो रहा है? कई ऐसी क्रियाएं हैं जिसमें बंद किसका होता है? कषाय पूर्वक जो भी काम होंगे, इंद्रिय सुख से संबंधित, ये कौन सा ध्यान है बताइए? पंखे की हवा लेना आर्त ध्यान है, रौद्र ध्यान है, धर्म ध्यान है, या शुक्ल ध्यान है? कौन सा ध्यान है भाई? चार ध्यान के नाम बता दिए हमने आपको। वैसे शुक्ल ध्यान पंचम काल में नहीं है। धर्म ध्यान है क्या? अब जितने लोग नहीं है बोल रहे हैं, फिर आगे ध्यान रखना फिर। तो इस बारे में आप विचार कर सकते हैं। क्या है कि अपन ये सब पढ़ रहे हैं अभी, और अपने को लगता है कि देखो ऐसे ऐसे जीव हैं, वैसे अपन अपने को छोड़ देते हैं। अपन कैसे जीव हैं वो एक तरफ, बाकी संसार में ऐसे ऐसे जीव हैं, वो ऐसे वैसे, अपन कैसे हैं? अपन इनसे बाहर है क्या? चार प्रकार के जीव में सब गर्भित हैं। पापानुबंधी पापात्मा, इनमें कई लोग आ जाते हैं, अधिकांश लोग इनमें आते हैं, पापानुबंधी पापात्मा में। फिर पापानुबंधी पुण्यात्मा, ये बहुत कम होते हैं। पुण्यानुबंधी पापात्मा, नहीं वो तो हो गया था, पापानुबंधी पुण्यात्मा। पुण्यात्मा पुण्य कमाया कर आया हुआ है, लेकिन अभी पाप से संपर्क में है। और आखिरी जो है पुण्यानुबंधी पुण्यात्मा, ये बिरले होते हैं। पहले भी पुण्य कमाया था, आज भी पुण्य कमा रहे हैं, लेकिन ऊपर की चेष्टा को देखकर आप निर्णय नहीं कर सकते कि वो पुण्य ही कमा रहे हैं। क्योंकि कई बार दान में भी लोग शर्त लगा देते हैं। एक बार एक व्यक्ति 25 लाख का दान दे रहे थे। ये घटना भारत के बहुत बड़े संस्था के अध्यक्ष के साथ घटित हुई थी कि वो दान देने को तैयार हो गए, एक व्यक्ति 25 लाख, लेकिन उसने शर्त क्या रखी कि ये दान जहाँ भी लगा रहे हो वहाँ से ये क्षेत्रपाल पद्मावती आदि शासन देवताओं को अलग कर दो, तब मैं ये 25 लाख का दान, ये शर्त रखी उनने। तब फिर उनने कह दिया कि हमें ऐसे दान की आवश्यकता नहीं, 25 लाख को ठुकरा दिया उनने। जिस दान का परिणाम विवाद हो, क्या है कि आप वातावरण बदलने में अपनी शक्ति खर्च कर रहे हो, इससे बड़ी बेवकूफी क्या हो सकती है? आप लोगों का हृदय बदल दो, वातावरण ऑटोमेटिक बदल जाएगा। बिना आस्था बदले आप दुनिया को बदल नहीं सकते। जब तक व्यक्ति की श्रद्धा नहीं पलटती, तब तक व्यक्ति नहीं बदल सकता। बाहर से आप क्या क्या करोगे बताओ? पूरे रास्ते में कितने कांटे होते हैं गांव को जाते समय, उन सब कांटों को अलग करोगे? ज्ञान सागर महाराज जी ने कहा कि नहीं, पैर में जूते पहन लो, सबसे बढ़िया रास्ता यही है। पूरी धरती पर दरी नहीं बिछाई जा सकती। बिछा तो इतनी बड़ी दरी बनती किसी कंपनी में है क्या? कोई मैट्स, कोई ऐसी चटाई या कोई ऐसी दरी है क्या जो सारी धरती पर बिछ जाए? नहीं। अपना कल्याण करने के लिए भी अपने पास कम समय है, कहां दुनिया को सुधारने चले आप? मारीच को आदिनाथ भगवान नहीं सुधार सके। आप आगे जो शब्द है वो बहुत, मतलब किस खेत की मूली है ये कह सकते माने, क्यों इतना अहंकार? तो ये जो 25 लाख का दान है, जिसके अंदर इस प्रकार का अभिप्राय छुपा हुआ है, एक तो या तो आप सबके पास निर्णय करो कि सच्चाई क्या है। जैसे आपको याद हो मोक्ष सप्तमी के उपदेश में ये बात सबको समझ में आ गई होगी कि शासन देवता कुदेव तो नहीं है, लेकिन राग है उनके अंदर, राग द्वेष है उनमें, इसलिए वो वीतराग भगवान की श्रेणी में भी नहीं है। एक तो वो कुदेव नहीं है, और दूसरी बात जिनेंद्र देव नहीं है, परमात्मा नहीं है। लेकिन जो है वो तो मानो, उनके प्रति अपशब्द बोलना और उनके प्रति अविनय का भाव लाना, अविनय मतलब जो तिरस्कार जैसा भाव है उसकी बात कर रहे हैं। जैसे आपस में अपन एक दूसरे की थोड़ी सी मर्यादा रखते हैं ना, कभी किसी को ऐसे हल्के शब्द तो नहीं बोलते, सभ्य भाषा में बात करते हैं, तो उतनी सभ्यता भी ना रख करके उनको वहां से निकाल के अलग कर दो। ये जो भावना है इस पर पुनः विचार करना चाहिए। तो वो जो दान है 25 लाख का, वो किसका कारण होगा? अब इसमें बहुत सारे तर्क आ सकते हैं दिमागों में कि नहीं, उसका उद्देश्य तो बहुत अच्छा है, ऐसे कुदेवों को तो रखना ही नहीं चाहिए क्षेत्रों पर। फिर विचार कर लो, क्या बोल रहे हैं आप? कुदेव, और फिर एक जो मिथ्या दृष्टि अजैन वहां पर सेवक के रूप में काम कर रहा है उस क्षेत्र में, करते हैं कि नहीं? क्षेत्र में सारे सम्यक दृष्टि जैन होते हैं क्या? मिथ्या दृष्टि जैनेतर भी वहां पर सेवा करते हैं? उसको तो अंदर आने देता है मंदिर के गर्भगृह तक, उसको परमिशन है। ये सारी बातें सोचने की है ना, ज्यादा हम इसको विस्तृत नहीं कर रहे हैं, और नहीं हम गुस्से में आपसे कुछ कह रहे हैं, लेकिन यही है कि जो निर्णय में उतावली होती है और कई बार अपन कुछ गलत फैसले कर लेते हैं, उसके बारे में एक बार शांत मन होकर के विचार करो कि क्या है सही क्या है गलत। हमने एक दिन कहा था कि विवाद निज वाणी से ही होते हैं, जिन वाणी से कभी विवाद नहीं होते। और जितने विवाद है आज, 13 पंथ 20 पंथ और पता नहीं कितने कितने नए नए पंथ, वो सारे विवाद मात्र निज वाणी के ऊपर चल रहे हैं, जिन वाणी में कोई विवाद नहीं है। अगर लोग जिन वाणी को समझ ले तो सब एक हो जाएंगे, और जब तक निजवाणी का पक्ष रखेंगे तब तक एकता न भूता न भविष्यति, न हुई है न होगी। पंडित जगनमोहन लाल जी ने 94 साल की उम्र में हमसे कहा था कि महाराज, मैं जब से होश संभाला है मैंने, तब से मैंने जैन समाज को निर्विवाद कभी नहीं देखा, निर्विवाद कभी नहीं देखा, हमेशा अखबारों में कोई ना कोई विवाद तो चालू ही रहा। कभी विधवा विवाह का एक विवाद चला, कभी 10-20 का विवाद चला, कभी अंतरजातीय विवाह का, विजातीय विवाह का विवाद चला, कभी 13 पंथ 20 पंथ का विवाद चला, कभी निश्चय व्यवहार का विवाद चला, कभी और किसी चीज को लेकर के विवाद चला। ये विवाद चलाने वाले जो लोग हैं वो वास्तव में धर्मात्मा नहीं है, क्योंकि धर्म कभी लड़ना नहीं सिखाता, और जो लड़ाते हैं वो धर्मात्मा हो नहीं सकते। तो सारे विवाद जो हैं वो ऐसे लोगों के कारण है जिनको धर्म का कुछ मालूम नहीं है, और जो धर्म के ठेकेदार बन के बैठ गए हैं। जब सर्व धर्म के सब लोग आए थे वहां पर, नागपुर में बड़ा प्रोग्राम हो गया था, तो उसमें अंतिम दिन हमें जो बोलना था, वो मुस्लिम लोग भी आए थे और फिर सरदार जी भी आए थे और सब लोग आए हुए थे, और उनके बड़े बड़े धर्म के जो प्रतिनिधि हैं उन्होंने भी आ करके कुछ शब्द बोले थे। और फिर जब हमें बोलना हुआ तो हमने कहा कि वो एक कोई मुक्तक था, किसी ने पता नहीं लिखा हुआ है, हमें जैसा याद आया वो हमने वहां पर कह दिया, अभी भी जैसा याद आ रहा है वो हम आपको सुना दें। खजाने को चोरों से नहीं पहरेदारों से खतरा है, देश को दुश्मनों से नहीं गद्दारों से खतरा है, और धर्म को नास्तिकों से नहीं ठेकेदारों से खतरा है। कितनी भयानक बात है, विचार करो। जो हीरो बनते हैं ना, धर्म के क्षेत्र में हीरो बनने की जरूरत ही नहीं है, भगवान के सामने जो जीरो बन करके आता है वो फिर भविष्य में परमात्मा होता है, खुद भगवान बनता है। जो भगवान के सामने हीरो बन करके आता है वो जीरो है, था और भविष्य में भी रहता है। इसलिए भगवान के सामने एकदम नगण्य बन करके आना चाहिए। कुछ भी नहीं, अपन है क्या, मतलब आप अगर थोड़ा सा चिंतन हो आपके पास और जिनवाणी का आधार हो तो होश ठिकाने आ सकते हैं। इसीलिए अपन ये अनुप्रेक्षाएं पढ़ रहे हैं कि अनुप्रेक्षा पढ़ते पढ़ते ये तो कम से कम समझ में आया कि मैं कुछ नहीं हूं, क्योंकि अभी तक मैं कुछ हूं, बस यही फासला है भगवान में और अपने में। कितना फर्क है कि अपन अपने आप को कुछ समझ रहे हैं और भगवान जो है वो समझ रहे हैं अपने आप, अपन जो नहीं है वो समझ रहे हैं अपने आप को, और भगवान जो है वो समझ रहे हैं, जान रहे हैं, देख रहे हैं। तो बस अब क्या कह रहे हैं यहां पर, वो चार प्रकार के जीव ख्याल में रखना, जो पाप कमा कर आए और पाप छोड़ नहीं रहे, जो पाप कमा कर आए लेकिन अब पुण्य करने लगे हैं, जो पुण्य कमा कर आए लेकिन अब पाप कर रहे हैं, और जो पुण्य कमा कर आए थे आज भी पुण्य कर रहे हैं। तो ऐसे बहुत सारे उदाहरण हो सकते हैं, जैसे दान में भी है धार्मिक कार्य, धार्मिक क्षेत्र, लेकिन भाव धार्मिक नहीं है, भाव में कुछ और बात भरी हुई है। हो सकता है धारणा में कुछ उनके ऐसा हो कि जो कुछ भी हम करने जा रहे हैं वो अच्छी चीज है, लेकिन अच्छी चीज भी अपनी दृष्टि में अच्छी है, आगम की दृष्टि में क्या है इस पर और नजर डाल लेना चाहिए। अपने को लगा कि अच्छी चीज है, हो सकता है कि भ्रम हो। ऐसा तो नहीं है कि हर चीज अपन जो समझ रहे हैं वो सब सही हो, कई बार गलतियां हो जाती है। कौन विमुह्यति शास्त्र समुद्र, आचार्य उमा स्वामी महाराज भी विनम्र होकर अंत में क्या कह रहे हैं, साधु विरत्र मम क्षमितव्यम कौन विमुह्यति शास्त्र समुद्र। कोई ऐसी चूक हो गई हो मेरे से तो सज्जन मुझे क्षमा करे। इतने बड़े उमा स्वामी आचार्य कह रहे हैं कि मुझे सज्जन क्षमा करे, क्योंकि शास्त्र समुद्र में किससे भूल नहीं हो जाती, ये सागर है। इसलिए इतनी अगर अपने अंदर नरमाई रहे तो फिर अपन प्रगति कर सकते हैं धर्म में, वरना आना न आना बराबर है, पढ़ना न पढ़ना बराबर है, कुछ करना न करना बराबर है। जब तक अंदर भावों की विशुद्धि नहीं है तब तक सब व्यर्थ है। आचार्य कुनकुन स्वामी ने कहा है कि भावों के बिना कोई सार नहीं है, भावेण हुई नग्गो, नग्न होता है साधु, भाव से ही हुआ जाता है नग्न। न दव्य लिंगेण धम्म संपत्ति, सिर्फ द्रव्य से मुनि मुद्रा धारण कर लेने पर धर्म की संप्राप्ति नहीं हो सकती, वहां भावों की भी अपेक्षा है। खैर ये तो मुनियों का विषय हो गया, अब इसको अपन यहां पर मुनियों को देखने के लिए मत लगाने की गाथा, क्योंकि आप देख भी नहीं सकते, चौथी कक्षा का विद्यार्थी एमए का पेपर नहीं जांच सकता। जांच रहे आजकल बहुत लोग जांच रहे, एक विद्यार्थी ने किसी संस्थान को छोड़ दिया और हमारे पास आ गया, हमारे पास आकर के उसने करीब 27 दिन तक के अध्ययन किया, फिर खुद उसने बताया कि मैंने इसलिए छोड़ा कि वहां मुनि निंदा होती थी, मैंने बोलकर छोड़ा कि यहां मैं कुछ सीखने आया था लेकिन यहां रोज निंदा होती है, इसलिए मैं आपको बतला कर इतल्ला करके जा रहा हूं, अब मैं यहां नहीं रहूंगा। वो हमारे पास आया, द्रव्य संग्रह उन्होंने पढ़ा और फिर काफी उनको प्रसन्नता हुई, उन्होंने कहा कि यहां आकर के मेरे को मन में शांति मिली। जहां निष्पक्ष स्वाध्याय होता है वहां शांति मिले बिना रह नहीं सकती, और जहां पर बीच बीच में अपनी बातों को अपने मंतव्यों को भर भर करके जबरदस्ती सामने वाले के दिमाग में भर दिया जाता है वहां पर अहंकार आदि कषायों की उत्पत्ति बढ़ जाती है। इसलिए जिनवाणी जो है कल्याणकारिणी है, बाकी निजवाणी जो है उसमें भटकन ही भटकन है। यहां कह रहे हैं कि पाप के कारण दुष्कर्म के प्रभाव से दुक्कम वसेण, पढ़ो जरा शब्द है ना, बीच में, पावेण जनो एसो, एसो माने यह, एसो का अर्थ ऐसो, ऐसा नहीं लेना हिंदी में। ओशो ने जो नमोकार पर लेक्चर दिया है उसमें एसो का अर्थ ऐसा ले लिया है। क्या होता है कि भाषा का ज्ञान न होने से भी कई बार अर्थ का अनर्थ होता है। वो भले कितना भी प्रसिद्ध और विख्यात व्याख्याता हो लेकिन त्रुटि सबसे होती है। अब व्याख्यान इतना सुंदर होता है कि सुनने वाला मंत्रमुग्ध हो जाता है, लेकिन सुनने वाला मंत्रमुग्ध हो जाए ये सत्य का लक्षण नहीं है। कोई किसी को मंत्रमुग्ध कर दे, हमारे गुरुजी कहते हैं कि रीढ़ सीधी करने से ध्यान नहीं होता और भीड़ सीधी करने से ज्ञान नहीं होता। यानी बहुत सारी भीड़ है, सारे सीधे बैठे हैं बिल्कुल शांत, तो इसका मतलब ये नहीं है कि बोलने वाला बड़ा ज्ञानी है। वो तो चतुराई है, कला है, कला है, वाक कला। वाक कला आप डेल कार्नेगी के उसमें चले जाओ, आप अमेरिका में एक संस्थान है, वो बोलना सिखाते हैं, और उनके जो वक्ता होते हैं 5 मिनट में आपको मतलब खुजाने भी नहीं देंगे, ऐसा भाषण दे देंगे आप कि आप मतलब हाथ ऐसे रखें तो ऐसे ही रह जाएंगे आपके, इतने जोरदार तरीके से वो प्रस्तुत करेंगे अपनी बात कि आपको हाथ तक हिलाने की इच्छा नहीं होगी। लेकिन क्या वह ज्ञानी है? ये एक विद्या है। तो इस विद्या, अथवा कई बार ऐसा होता है कि कुछ विशेष कार्यक्रम होते हैं, उन कार्यक्रमों में एक निश्चित व्यवस्था भी होती है, उस व्यवस्था में एक अलग आकर्षण होता है और उस आकर्षण में प्रभाव होता है। उस प्रभाव को क्या धर्म कह सकते हैं? क्योंकि हिंदुस्तान में कई स्थानों पर ऐसे कार्यक्रम होते हैं जिनको आप लोग शिविर बोलते हैं, आपके यहां भी होते हैं। शिविर की सुचारू व्यवस्था धर्म नहीं है, उस व्यवस्था का विरोध नहीं किया जा रहा है, लेकिन यह याद रखना कि धर्म कोई बहुत गहरी और बहुत ऊंची वस्तु है, वहां तक सीमित नहीं है। आया समझ में? शिविर की व्यवस्था का विरोध मत समझना इस बात को, सिर्फ हम इतना कहना चाह रहे हैं कि शिविर जो है उतना मात्र धर्म नहीं है, धर्म बहुत बहुत ऊंची चीज है। शिविरों से लोग लाभ लेते हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन सारे शिविर लाभदायक होते हैं ये नहीं कहा जा सकता। कई शिविर ऐसे भी हो जाते हैं कि जिसमें बहुत सारी ऐसी धारणा होती है लोगों में कि जो आगम से हट करके है। कई बार ऐसी भी धारणा हो जाती है कुछ शिविरों में, उदाहरण के तौर पर कई बातों का निषेध हो जाता है। जैसे एक बार किसी शिविर में रत्नकरण श्रावकाचार्य की पंक्ति को लेकर के कहा कि बहुरी इस पंचम काल विषय भावलिंगी मुनीश्वर अर्जिका व क्षुल्लक का समागम तो है ही नहीं। ढूंढारी भाषा में पंडित सतासुख जी की पंक्ति है, ये बात कह दी गई कि इस पंचम काल में भावलिंगी मुनीश्वर यानी भावलिंगी मुनियों का समागम नहीं है। खैर मुनियों को तो अलग कर दिया, पर आर्यिकाओं को और क्षुल्लकों को भी नहीं छोड़ा उनने। अर्जिका का भी समागम नहीं है। फिर बचे कौन? क्षुल्लक। क्षुल्लक का भी समागम नहीं है और है ही नहीं, ही लगा दिया। अब शिविर में जितने शिविरार्थी थे उनको लगा कि वर्तमान में जितने भी आंखों से दिख रहे हैं वो दिख तो रहे हैं, लेकिन हमने जो शिविर में पढ़ा था और रत्नकरण श्रावकाचार में पढ़ा था, उनको ये नहीं पता कि रत्नकरण श्रावकाचार के श्लोक अलग हैं और रत्नकरण श्रावकाचार की व्याख्या अलग है। श्लोक आचार्य समंतभद्र स्वामी के हैं, व्याख्या किसी असंयमी व्यक्ति की है। तो ये फर्क उनको नहीं मालूम, शिविरार्थियों को। परिणाम क्या निकला? परिणाम ये निकला कि उनकी धारणा बन गई कि इस पंचम काल में स्वयं जिनवाणी कह रही है। क्या धारणा बनी? वो जिनवाणी नहीं थी, वो निजवाणी थी। जो पंक्ति है ना, वो निजवाणी थी। ऊपर के श्लोक तो जिनवाणी है, लेकिन जो नीचे की व्याख्या थी वो निज वाणी थी, निज वाणी को उनने जिन वाणी समझ लिया। और फिर अब उनके सामने से अगर कोई मुनिराज निकल जाए तो वो दुकान से उठ करके खड़े नहीं होंगे, क्योंकि जिनवाणी कहती है कि पंचम काल में भावलिंगी मुनि नहीं होते, ये तो ऊपर से बने हैं मुनि, अंदर से मुनि थोड़ी हो सकते हैं। और इसी प्रकार आर्यिका जी आ जाए कोई, तब भी उठकर खड़े होना नहीं उनको, जिनको देना है दे आहार, जिनको सेवा करना है करें। परिणाम क्या होगा, सच्चे साधु की सेवा न करके जो ऊपर से साधु है उनकी सेवा का परिणाम नरक निगोद की सेवा और क्या हो सकता है, ऐसी उनकी धारणा हो गई। सबकी बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन जिनका अधूरा ज्ञान है उनके साथ ये समस्या खड़ी हो जाती है। तो शिविर का परिणाम क्या निकला, शिविर के दो परिणाम निकल सकते हैं, एक तो सही चीज व्यक्ति समझ सकता है, धर्म के प्रति रुचि जागृत हो सकती है, और दूसरा परिणाम क्या है कि गुरु के प्रति कोई विपरीत धारणा भी बन सकती है, और कई बार शास्त्र की जो मूल मान्यता है उससे विपरीत धारणा भी बन सकती है। अभी कुछ विवाद अभी वर्तमान में बहुत ज्यादा जोर शोर से चल रहे हैं, नवदा भक्ति का एक विवाद चलता है, नवदा भक्ति होना चाहिए कि नहीं, आर्यिकाओं की, क्षुल्लक आदि की, ये एक विवाद चलता है। इसका हम एक संस्मरण सुना है, अपने संघ का एक किस्सा है, 89 की बात, 89 आचार्य ग्रीष्मकाल में कोनी जी में थे, और उस समय अपने संघ में एक महाराज जी ने आहार दान विधि नाम का एक पत्रक दिया किसी श्रावक को, तो उन्होंने प्रिंट करवा दिया उसको। प्रिंट होने के बाद वो बांटा गया, और फिर पता नहीं कहाँ से घूम फिर करके वो एक पत्रक आचार्य के पास आ गया, आचार्य के इस बाजोटे के ऊपर, चौकी के ऊपर। आचार्य ने ऐसे पढ़ा, और पढ़ने के बाद उसमें एक वाक्य देखा कि नवधा भक्ति केवल मुनिराजों की जाती है, आर्यिकाओं आदि की नहीं। तो इरियापद शुद्धि के बाद तत्काल आचार्य ने उनको बुलाया, और उनको बुला करके अनुशासन के स्वर में कहा कि ये वाक्य कैसे लिखा है। वो थर्रा के घबरा गया, कि आचार्य जब डिसिप्लिन करते हैं किसी को ऐसे देख ले तो फिर हालत खराब हो जाए। अभी तो आचार्य की मुस्कान देखी है आप लोगों ने, उनकी अनुशासन वाली आंखें देख लो तो फिर होश ठिकाने आ जाए। जब उनने पूछा कि ये क्या लिख दिया है, तो फिर उनने हाथ जोड़कर कहा कि आचार्य इसमें अपने संग में तो नहीं होती नवधा भक्ति। तब आचार्य ने जवाब दिया, अपने संग में नहीं होती, संग संग के नियम अलग होते हैं, अपने संग में नवदा भक्ति नहीं होती, और तुम ये पत्रक सबको दे रहे हो तो आर्यिकाओं को भूखा रखना चाहते हो क्या, दूसरे संघ की आर्यिकाएं आएंगी उनको आहार कौन देगा। बोले श्रावक का कर्तव्य है कि साधु को भूखा ना जाने दे, ये आचार्य श्री के वाक्य है। और जितने लोग आचार्य श्री का नाम लेकर के आचार्य श्री से विपरीत धारणा का प्रचार प्रसार कर रहे हैं, समाज बेचारी भोली है, नादान है। समाज को लगता है कि सील बहुत ऊंची सील है, बहुत सबसे बड़ी कंपनी की सील है आचार्य विद्यासागर महाराज, तो फिर माल बहुत टॉप का होगा, लेकिन इस कलिकाल में भरोसा नहीं है कोई, क्या मालूम नकली माल पर मेड इन जापान लिखा हो। तो ये सब जो प्रचार है, दुष्प्रचार और व्यर्थ में समाज और संघों में वितंडावाद और विवाद फैलाने वाली बातें हैं। आचार्य श्री का वाक्य अभी जाकर आप पूछ लेना कि ध्यान सागर जी ने जो बात कही है यहां पर, वो खुद आचार्य श्री से पूछना, संघ में दूसरे से नहीं पूछना किसी से, डायरेक्ट जो बात है ओरिजिनल जो बात होती है वो ओरिजिनल जिसके मुख जिसके बीच की बात है उससे बात करो आप, तीसरे से क्यों पड़ते हो चक्कर में, क्यों निगोशिएटर बनाते हो किसी और को, प्रतिनिधि बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है, जैक क्यों लगाना चाहते हैं आप, सीधे फैसला करो ना, जो बात सच है सो डंके की चोट पर सच है, और जो झूठ है उसमें बहुत सारी लीपा पोती करनी पड़ती। क्यों आप आचार्य जी का नाम क्यों ले रहे हैं गलत बात का प्रचार करने के लिए? और इसका परिणाम क्या निकला है मालूम है? परिणाम ये निकला है कि आज जो पहले आचार्य कुंथु सागर महाराज श्री ने आचार्य श्री की स्तुति लिखी थी, आचार्य श्री की स्तुति लिखी थी, वो स्तुति हमने पढ़ी हुई है और अभी भी आपको कहीं भी मिल जाएगी किसी पुस्तक भंडार में। और आज क्या स्थिति है? आज संघ संघ में इतनी दूरियां बढ़ गई है, साधु साधु में कभी इतनी दूरियां नहीं थी। आचार्य शांति सागर महाराज के समय भी मतभेद थे लेकिन मनभेद नहीं थे। और ये मनभेद पैदा करने वाले वो तीसरे लोग हैं। न आचार्य श्री ने कभी झगड़ा किया है किसी साधु से और न किसी साधु ने आकर के आचार्य श्री से झगड़ा किया है, बल्कि आचार्य श्री ने तो कई बार, एक बार हमारे पास एक किसी बहुत बड़े संस्थान के डायरेक्टर आए थे, उनने कहा कि महाराज मैंने एक बार कोशिश की थी आचार्य श्री से कुछ ऐसा बोलने की, तो आचार्य श्री ने मुझे तुरंत टोक दिया, बोले कि आउट ऑफ कोर्स बात मत करो यहाँ पर। और फिर अभी अहमदाबाद की बात है कि एक बार किसी ने, अब जिसको आप लोग 20 पंथी मान्यता कहते हैं, वहाँ के किसी महाराज के बारे में आचार्य श्री के सामने कुछ बोलने की कोशिश की, तो आचार्य श्री ने तुरंत कहा कि तुम साधु के बारे में साधु के सामने बोल रहे हो, तुम इतनी तो मर्यादा रखो। बोले देखो ये मर्यादा आचार्य श्री ने उसको सिखाई, तो ये सवाल ही पैदा नहीं होता कि आचार्य श्री किसी साधु की निंदा सुनते हो। किसी भी साधु में कोई वाद विवाद पैदा करना महान अनर्थ का कारण है, और फिर वो सदगति का पात्र कैसे बन सकता है जो साधु साधु के बीच में दूरियां बढ़ा दे। अभी मूलचंद दोहाड़िया जी आए थे, वो हमसे कह रहे थे कि महाराज जी आप कोई ऐसा प्रयास करो कि आपके निमित्त से साधु साधु मिल जाए, क्योंकि दूरियां बहुत बढ़ती जा रही है और फिर इसका परिणाम अच्छा नहीं निकलेगा। और आप खुद भी बहुत सारे लोग इस बात को समझ रहे होंगे कि कुछ लोग विद्यासागर महाराज जी का नाम पसंद नहीं कर रहे हैं। क्यों नहीं कर रहे हैं? उसमें विद्यासागर महाराज का क्या दोष है? दोष उनका है जो विद्यासागर के नाम से नकली माल बेच रहे हैं। बदनाम कंपनी होती है सोनी कंपनी के नाम से अगर कोई आर्टिफिशियल कुछ चीज बेच दे तो फिर दोबारा क्या वे व्यक्ति सोनी का माल खरीदेगा? क्यों खरीदेगा? खरीद ही नहीं सकता। और जब ये पता चल जाए कि वो नकली था तब फिर वो सोनी का असली माल ढूंढना चाहेगा। और ऐसा हुआ है, कई संघों से हमारा मिलन हुआ और हमने उनसे कई चर्चाएं की, और चर्चाओं के दौरान उनको फिर ये एहसास हुआ कि हमारी तो गलत धारणा बन गई थी आचार्य श्री के प्रति, लेकिन अब आपसे मिलकर के हमें समझ में आ रहा है कि नहीं वैसा नहीं है। तो ये 13 पंथ 20 पंथ का विवाद आचार्य श्री के मस्तिष्क की देन नहीं है, किंतु कुछ दूसरे बीच के ऐसे लोग हैं जिनको कौन सी उपमा दी जाए ये आप लोग जानिएगा। लेकिन मनुष्य पर्याय में आकर के पुण्य कमा करके आए हैं और फिर यहां से पाप कमा कर जाने की तैयारी कर रहे हैं। एक तो क्या है कि कोई भी ऐसी चर्चा करने का अधिकार सिर्फ उस साधु को है, उस पिच्छीधारी को है जिसको गुरु ने एक विशिष्ट दीक्षा दी है। देखो कितनी प्रकार की दीक्षा है, क्षुल्लक दीक्षा, एलक दीक्षा, आरिका दीक्षा, क्षुल्लिका दीक्षा, मुनि दीक्षा, उपाध्याय दीक्षा, आचार्य पद दीक्षा। ये 7 प्रकार की दीक्षा है जैन शासन में जिन लिंग से संबंध रखने वाली। एक 8वीं दीक्षा और होती है। उस 8वीं दीक्षा को जिस साधु ने प्राप्त किया है उसी को किसी मत का खंडन मंडन करने का अधिकार होता है, क्योंकि उसकी वाणी इतनी संतुलित होती है कि उसके खंडन मंडन से कभी विवाद पैदा नहीं हो सकता। आज तो जो आया माइक मिला मुंह खुल गया, जीभ लगा दी, तलवे पे मार दी और फड़ाक से कोई भी बात कर दी, किसी का भी खंडन मंडन प्रारंभ कर दिया, आलोचनाएं चालू कर दी। नहीं, ऐसे में जैन शासन को बहुत क्षति पहुंचेगी। क्या है कि साधुओं में जितनी दूरियां बढ़ेंगी श्रावकों में डबल बढ़ेगी, क्योंकि श्रावक क्या करता है, जैसे लौकिक क्षेत्र में यथा राजा तथा प्रजा, वैसे धार्मिक क्षेत्र में यथा गुरु तथा भक्ता, वो स्थिति बनती है। इसलिए इस चीज़ का अंत आना चाहिए, किसी उपाय से आ जाए अंत आना चाहिए। और फिर ऐसे लोगों को बढ़ावा नहीं मिलना चाहिए जो विवाद को पैदा करते हैं, क्योंकि उनको बढ़ावा मिलने के कारण फिर समाज बट जाती है, और फिर समाज का बंटना कौन पसंद करता है।